इस भांति कुर्गों को जिनकी उदार आहार सूची में गोमांस के अतिरिक्त लगभग सभी प्रकार का मांस था और जो शराब नृत्य खेलकूद और शिकार के प्रेमी थे, कुर्ग में यूरोपी बागान मालिक की जीवन शैली का अनुसरण आसान लगा, जबकि दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों या लिंगायतों को वह बहुत कठिन और विभिन्न पेशों में लगता था। हुआ यह कि दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में अंग्रेजी शिक्षा ली। पश्चिमीकरण के पहले चरण में उनका पेशे का जीवन तो पश्चिमी जगत में बीतता, पर उनका पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन अधिकतर पारंपरिक ही बना रहा। यहाँ सांस्कृतिक मनोभाव जन शब्द स्वभावतः मन में आता है, पर इस स्थिति को विकृति मूलक मानने के विरुद्ध चेतावनी देना आवश्यक है। केवल वे दक्षिण भारतीय ब्राह्मण जिन्हें भारत से बाहर दीर्घ काल तक चाहे विद्यार्थी के रूप में चाहे सेना के सदस्य के रूप में पश्चिमी जीवन का संघात झेलना पड़ा, अंग्रेज आहार शराब और नृत्य की अपनाना संभव पा सके। यद्यपि अंग्रेज संस्कृति के तत्वों का चुनाव विस्तार और रूपांतर होता अवश्य है, फिर भी यह कहना आवश्यक होगा कि वह कोई सचेत प्रक्रिया नहीं है जिसमें हर चरण में बुद्धिसंगत चुनाव हो पाता हो। ग्रहण करने में ऊपरी स्व स्फूर्तता है और विस्तार अंतर्वर्ती विकास जैसा दिख पड़ता है, पर इस स्थल पर भारत अंग्रेज संपर्क की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की याद कर लेना उपयोगी होगा। 19वीं शताब्दी का प्रारंभ होते होते अंग्रेज भारत के बड़े भाग पर अधिकार कर चुके थे और उनके पास इनकी विशाल और संगठित शक्ति मौजूद थी कि अपनी मर्जी भारतीय जनता पर ला सके। इसने उनके भीतर भारतीयों से श्रेष्ठ होने का भाव उत्पन्न किया। शासकों के रूप में उनके अपने लक्ष्य और नीतियां थी जिनको उन्होंने हर चरण में भारत में अपने अंग्रेज प्रतिनिधियों के द्वारा लागू करने का प्रयास किया। इस संबंध में नीति के स्थानीय लागू करने वाले कार्यस्थल पर मौजूद लोगों के व्यक्तित्व बुनियादी महत्व के थे, क्योंकि उन्हें लंबी दूरी और अविकसित संचार साधनों के कारण विशेष भाप से चलने वाले जहाज लोकप्रिय होने लगे और स्वेज नहर बनने के पहले पर्याप्त अधिकार मिला हुआ था। भारत में आने वाले अंग्रेज कई सुस्पष्ट व्यावसायिक और सामाजिक श्रेणियों के व्यक्ति थे। बर्नार्ड कोहन ने कहा है, बनारस जैसी दूर जगह में भी एक अंग्रेज समाज नहीं, कई अंग्रेज समाज थे। बुनियादी विभाजन अफसरों और गैर अफसरों के बीच था। भारत और इंग्लैंड पर प्रभाव भी दृष्टि से और अधिकतर तथा पद की दृष्टि से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अफसरों का समुदाय कहीं अधिक भारी था। असैनिक अफसर का पद और वेतन आमतौर पर सैनिक अफसर से ज्यादा था। असैनिक अफसर सरकार का प्रधान और आमतौर पर असैनिक ही होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक भी असैनिक ही थे। असैनिक अफसरों के बाद सौदागर और व्यापारी थे जो प्रेसिडेंसी नगरों के कुछ धनी और शक्तिशाली लोगों के को छोड़कर सामाजिक दृष्टि से अफसरों से अलग रहते थे। बागानों के मालिक अन्य व्यवसायी समूहों से कुछ भिन्न थे और अपने बागानों के पास अथवा उन नगरों में रहते थे जहां उनकी उपज नीलसन चाय को पर्यायोपयोगी बनाया जाता था। अंत में बंदरगाहों शहरों और यूरोपीय दस्तकार नौकर तर्ती आदि होते थे जो फौजियों से या ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजियों में से भर्ती किए जाते थे। यह समूह यूरोशियनों में मिल जाता था जो श्वेत सोपान के तल में स्थित थे। ये व्यावसायिक श्रेणियों के किसी हद तक अंग्रेज समाज की सामाजिक श्रेणियों के अनुरूप थी। सैनिक और असैनिक अफसर अंग्रेज समाज के कमोवेश एक ही स्तर से आते थे। भूस्वामी रईस लंदन के बड़े बड़े व्यापारी और पेशों के लोग सैनिकों की संख्या असैनिकों से अधिक थी और वे आम तौर पर असैनिकों से अलग रहते थे। संख्या में कम होने पर भी असैनिक अफसर अंग्रेज औपनिवेशिक समाज में प्रधान वर्ग के थे, वे पारिवारिक संबंधों और रिश्तेदारियों द्वारा एक सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि द्वारा और हेलीबरी स्कूल के पुराने बंधनों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दूसरी ओर व्यापारी सौदागर और बागान मालिक निचले सामाजिक स्तर के लोग होते थे, वे सौदागरों और अफसरों के बेटे होते थे। बागान मालिक अपने आप को सौदागरों और व्यापारियों से कुछ ऊंचा समझते थे और उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यही थी कि असैनिक अफसरों के समाज में किसी तरह प्रवेश पा जाएं। धर्म प्रचारकों का एक समूह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत छोटा और महत्वहीन था और जैसा पहले कहा गया है, उन्हें अंग्रेज शासित भारतीय प्रदेश 1813 के बाद ही काम करने की अनुमति मिली और वह भी एक लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत थी, किंतु शताब्दी के परवर्ती वर्षों में उनका महत्व निश्चित रूप से बढ़ता गया। भारत में अंग्रेज धार्मिक प्रचारकों के कई वर्ग संबंधों में से केवल बैप्टिस्टों और मैथोडिस्टों के बारे में ही हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि उनमें से बहुत से निम्न वर्ग के थे और दस्तकारों और व्यापारियों के लड़के थे। भारतीय समाज के अध्येता यदि भारत में अंग्रेजों को भी वर्ण के मुहावरे में देखें तो उन्हें क्षमा मिलनी चाहिए। सामाजिक स्तूप के शीर्ष पर असैनिक अफसर, सेना के बड़े अफसर और सौदागरों महाजनों में से सबसे बड़े और सबसे धनी लोग थे। वे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कोटियों के अनुरूप थे। उनके नीचे थे यूरोपीय दस्तकार, नौकर चाकर और तरती लोग जो शूद्रों के अनुरूप थे, किंतु अधिकांश भारतीयों के लिए सारे यूरोपीय लोग एक अभिव्यक्त भक्त जन समूह की भांति थे, जो पद की नितांत लौकिक कसौटी की दृष्टि से तो भारतीयों से ऊपर थे, पर कर्मकांड की दृष्टि से अत्यंत निचले पद पर समझे जाते थे। फ्राइकेन वर्ग ने लिखा है कि भारत में अंग्रेजों का भारतीकरण हुआ और वे भी भारत की अनेक जातियों में से एक की भांति रहने लगे थे। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के एक जिले के नगर गुंटूर में भी सामान्यतः सारे देश की भांति एक रूप समाज नहीं था। उसकी आबादी समुदायों में बटी हुई थी और स्तरबद्ध थी। गुंटूर में अंग्रेज भी बहुत से आत्मसीमित और अर्धविलग समुदायों में से एक थे, किंतु अंग्रेज अफसर अपने सरकारी काम के सिलसिले में मराठी भाषी ब्राह्मण देशस्थों और घनिष्ठ के संपर्क में आए, जो लगभग 3 शताब्दियों से गुंटूर जिले का प्रशासन चला रहे थे और जिनसे अंग्रेजों को बहुत से निम्न अधिकारी प्राप्त हुए थे। अंग्रेज शासकों का उस क्षेत्र के पूर्ववर्ती मुस्लिम शासकों से और कई अन्य जातियों और समुदायों से घनिष्ठ संपर्क रहा था। अंग्रेज अफसरों और देशस्थों के बीच घनिष्ठ सरकारी संपर्क के फलस्वरूप बहुत बार उनके बीच गहरी मैत्री भी पैदा हुई। अंग्रेज व्यापारी स्थानीय व्यापारी वर्गों से संपर्क स्थापित करते थे और धर्म प्रचारक अपने काम के ही कारण अक्सर सबसे निचली और गरीब जैसे मॉल और मादिक जातियों के बीच पहुंचते थे। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संपर्क धंधे आय और वर्ग के आर पार भी होता था। उदाहरण के लिए अंग्रेज अफसर और न्यायाधीश अपने सरकारी कामकाज के सिलसिले में बहुत तरह के भारतीयों के संपर्क में आते थे। वास्तव में कोहन ने इस बात की पक्की दलील पेश की है कि भारत और भारतीयों के बारे में अंग्रेज के विचार उसके अपने विशेष धंधे और अंग्रेज भारत इतिहास के उस दौर के अनुसार जिसमें उसने भारत में काम किया भिन्न भिन्न होते थे। इस भांति 1840 के बाद अंग्रेज अफसरों के भूमि संबंधी बंदोबस्त के काम के अनुभव के फलस्वरूप उनमें किसान की सराहना और शिक्षित शहरी मध्यवर्गीय भारतीय के प्रति तिरस्कार का भाव पैदा हुआ, जो स्वाधीनता प्राप्ति तक चलता रहा।